हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्वारका में भगवान कृष्ण के, द्वारकाधीश कृष्ण के तीन प्रमुख भक्तों में जब अहंकार हुआ, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी और पटरानी रुक्मिणी देवी, तब भगवान ने हनुमान जी का विचार किया कि इन्हीं के माध्यम से इन तीनों का गर्वहरण किया जाए। तो भगवान द्वारकाधीश हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनको बुला लेते हैं और द्वारका के बाहर सीमा में जो जंगल है वहाँ पर आकर विराजने के लिए विनती करते हैं। हनुमान जी जहाँ कहीं भी थे वो वहाँ पर आकर रुक जाते हैं, पेड़ों का फल का ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। जब भगवान को संकेत मिलता है कि हनुमान जी द्वारका के सीमावर्ती जंगल में आ चुके हैं, तो वो गरुड़ जी को बुलाते हैं और कहते हैं, गरुड़ जी मेरा परम भक्त जो हैं वानर रूप हैं हनुमान जी, वो द्वारका के सीमावर्ती वन में आ गए हैं, उन्हें कृपा करके मुझे मिलने के लिए ले आइए। जैसे वाहन भेजते हैं और चक्र को बताते हैं, जब गरुड़ चले जाते हैं तो चक्र को बुलाते हैं, सुदर्शन अभी मैं बहुत व्यस्त रहने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण काम में मुझे इस समय द्वारका के नगरी में किसी भी दिशा से कोई भी ऐसा प्राणी अंदर नहीं आना चाहिए जो मेरे काम में व्यवधान उत्पन्न करे। हमारा काम है चारों तरफ मंडराना है, चक्र लगाना है और देखना है कि कोई व्यक्ति जो अयोग्य है अंदर आने के लिए वो अंदर प्रवेश न करे। जो आज्ञा महाराज। चक्र जी चले गए। फिर भगवान अंतापुर में गए और रुक्मिणी को मिले और रुक्मिणी को कहा कि मेरे पिछले अवतार के सर्वश्रेष्ठ दास शिरोमणि श्री हनुमान जी भी द्वारका के दरबार में आ रहे हैं, इसलिए आपका आज तक का जो सर्वोत्तम श्रृंगार है वो करके आप तैयार रहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले अवतार के अंदर मेरे रानी का सीता देवी का अनोखे श्रृंगार का अनुभव किया है, इसलिए आप भी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करके तैयार रहिए। ये सब तीनों बातें हो जाती हैं। फिर गरुड़ जी तेज गति से द्वारका पार करते हुए सीमावर्ती वन में प्रवेश करते हैं, वहाँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी वहाँ पर पेड़ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग फल निकाल के खा रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हनुमान जी आप हनुमान जी हैं? हाँ मैं हनुमान जी हूँ। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का आदेश है कि हमें आपको ले जाना है उनकी भेंट करने के लिए, आप आइए मुझ पर विराजमान हो जाइए, बड़ी तेज गति से आपको मैं द्वारका ले जाऊंगा और प्रभु के दर्शन कराऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं बड़ी दूर से आया हूं, मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़े और फल खा लेता हूं, मेरा जब पेट भर जाएगा तब तो मैं आ जाऊंगा। वो तो कहते हैं, नहीं नहीं आ जाइए, मेरी गति बहुत तेज है, आपको देर लगेगी, आप आइए मैं आपको जल्द पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं आप चले जाइए मैं आ जाऊंगा। तो मन ही मन गरुड़ सोचते हैं कि है तो बंदर ही, उसे क्या पता मेरी गति में कितनी विलक्षणता है, मैं कितना तेज गति से उड़ता हूं, क्या करें बंदर को कैसे समझाएं, ठीक है चले जाते हैं। तो गरुड़ जी चले गए। कुछ देर बाद में पेट भर के फल खाने के बाद हनुमान जी ने सोचा, चलो भगवान को मिलने को चलते हैं, और उन्होंने एक छलांग लगा दी, वहां से सीधे द्वारका के बीच पहुंच गए तो चक्र ने उसको रोक लिया। हे बंदर कहाँ जा रहे हो, हमें आदेश है कि आज किसी प्राणी को, अयोग्य व्यक्ति को द्वारका के अंदर नहीं भेजना है। तो काफी देर तक हवा में उड़ते रहे तो ये चक्र बीच बीच में आता रहा, तो चक्र को फिर एक ऐसे पकड़ा हाथ से और उस गोल चक्र के चार बार मोड़ कर कोई गोली बना दिया और उसको मुंह में रख दिया। मुंह में रखकर सीधे द्वारका के दरबार में छलांग लगाई। तो तुरंत प्रभु अपने आसन से उठ गए, हनुमान जी जाके उनके चरणों में गिरे, प्रभु प्रभु आंखों में आंसू बहाकर चरणों के दर्शन किए, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, आपने याद की, अपनी स्मृति की, मेरा भाग्य है, ऐसे करके बहुत प्रेम का आदान प्रदान। प्रभु राम उनको गले लगाते हैं, श्री कृष्ण भगवान उनके, हनुमान जी के पूज्य राम, वो जानते हैं कि यही कृष्ण हैं, उनको गले लगाते हैं, अश्रु बहाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, बहुत वार्तालाप होता है, राम जी के लीलाओं की याद करते हैं कि उस लीला में आपने ऐसे किया था, आपने वैसे किया था, बड़े अपने आप को कृतकृत्य और धन्य मानते हैं। बहुत देर तक संवाद होता है, उसमें राज सिंहासन पर द्वारकाधीश के सिंहासन के बाजू वाले आसन पर रुक्मिणी देवी अपना सर्वोत्तम श्रृंगार करके विराजमान थी और ये सब लीला प्रभु की निहार रही थी कि कितना प्रेम है हनुमान जी के ऊपर, कितना श्रेष्ठ भक्त होगा ये भगवान का, इस पर चिंतन कर रही थी और ये भी चिंतन कर रही थी कि एक नज़र मुझे भी देख ले। तो काफ़ी देर तक इनका भोजन होता है, फल फलाहार होता है, बातें होती है, गले मिलना होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, काफ़ी समय निकल जाता है इसमें। उसके बाद में हनुमान जी प्रभु के कान में कहते हैं, प्रभु जी, महाराज स्वामी जी, आपसे कुछ एकांत में बात करना चाहता हूँ। चलो थोड़े बाजू में जाते हैं और हनुमान जी द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को कान में पूछते हैं मृदु स्वर में कि ये आपके बगल में दासी कौन बैठी हुई है? जब आप राम अवतार में थे तो सीता देवी आपके बाजू में बैठा करती थी, क्या इस अवतार में आपने दासियों के साथ बैठने के स्वीकार किया है क्या? इसका अर्थ क्या हुआ कि दासियों का श्रृंगार और सौंदर्य पटरानी के सौंदर्य से कम होता है? उन्होंने सीता देवी के सौंदर्य का और श्रृंगार का दर्शन किया था हमेशा प्रभु राम के साथ में, तो उस सौंदर्य के मुकाबले, उस श्रृंगार के मुकाबले रुक्मिणी का श्रृंगार राम को, हनुमान जी को दासी के श्रृंगार के बराबर लग रहा था। और हनुमान जी कहते हैं मृदु स्वर में, लेकिन इतनी जोर से कहते हैं कि रुक्मिणी को भी उसका श्रवण हो। जैसे ही हनुमान जी के मुख से प्रश्न रूप में वो संवाद रुक्मिणी को सुनाई पड़ता है, वो चूर चूर हो जाती है कि मेरे सर्वोत्तम श्रृंगार में भी मैं सीता देवी के दासी समान लगती हूँ। वहीं पर उनका अहंकार जो है, थोड़ा बहुत जब स्वाभिमान था वो अहंकार नष्ट हो जाता है। उसके बाद भगवान उनको पूछते हैं, अरे मैं देख रहा हूँ बहुत देर से तुम्हारी गाल में कुछ फोड़ा आ गया क्या, कोई सूजन आ गई ऐसा लग रहा है, बहुत देर से मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो गोल गोल सूजन दिखाई पड़ रही है। तो हनुमान जी कहते, अरे हाँ मैं प्रभु बताने को ही भूल गया, जब मैं आ रहा था छलांग लगा के तो कोई चक्र नाम का व्यक्ति था वहाँ पर, सुदर्शन, कहता था मैं भगवान का रक्षक हूँ, अस्त्र हूँ, शस्त्र हूँ, तो मुझे रोक रहा था, तो मुझे आपको मिलने में इतनी आतुरता थी, मैंने उसको पकड़ा और मोड़ के मुँह में रख दिया। अरे अच्छा अच्छा बोले, मैं तो मेरा भक्त है वो, अरे उसको मुँह में मत रखो, उसको निकालो, अरे भगवान माफ़ करना माफ़ करना। मुँह से उसको निकाल लेते हैं और चक्र को प्रकट कर देते हैं, चक्र जो है हनुमान जी के चरणों में गिर जाते हैं कि जिस बल पर मुझे इतना गर्व था एक बंदर ने मुझे मोड़कर अपने मुंह में रख दिया और पूरा कार्यहीन कर दिया, गतिहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। तो वहीं पर उनका अहंकार चूर हो गया। इतना सारी लीला होने के पश्चात में गरुड़ जी उड़ते उड़ते हाफते हाफते आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु वो बंदर तो आने को तैयार ही नहीं है, मैंने कहा कितना समझाया उसे कि मेरी गति बहुत तेज़ है और मैं तुमको तुरंत ले जाऊंगा और मैं फिर अकेले लौट के आया, प्रभु माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आज्ञा थी उसको ले आने की, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाया, लेकर आ नहीं पाया। प्रभु कहते हैं, ये हनुमान जी हैं, बहुत देर के पहले ही आ चुके हैं। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो इतनी तेज़ गति से आया, हाफते हाफते प्रवेश किया, यहाँ पर वो आराम से बैठ कर कह रहे हैं प्रभु कि बहुत देर पहले पहुँच चुके हैं, बहुत सारी लीलाएँ हो चुकी हैं। तो गरुड़ जी के गति का जो अहंकार था वहां पर चूर हो गया। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे, हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के पास बल था, शक्ति थी, सौंदर्य था, गति थी, सब कुछ था, फिर भी हनुमान जी के साथ एक गुण था, वो नम्रता का। उस नम्रता के विषय में, उनकी नम्रता को प्रकट करने के लिए प्रभु ने लीला की और साथ साथ में हनुमान जी का गौरव करते करते ही अपने तीन प्रमुख भक्तों का अहंकार भी नष्ट कर दिया। बोलो श्री हनुमान जी की जय। उसके बाद में रामायण में और एक कथा आती है हनुमान जी के नम्रता के विषय में। नम्रता के साथ साथ सेवा की जो उत्सुकता है, किसी भी कीमत पर प्रभु के आनंद के लिए कोई भी सेवा करने को तैयार रहना, ये जो हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी के शब्दकोश में कहीं अशक्य, नामुमकिन ये शब्द नहीं था। रामायण तो बहुत लंबा और सुंदरकांड का गौरव बहुत विचित्र और विलक्षण है कि हनुमान जी क्या क्या काम किए प्रभु के सेवा में, जो नामुमकिन लग रहे थे वो तो प्रभु की सेवा में हनुमान जी ने मुमकिन करके दिखाए हैं। उसमें से एक छोटी सी कथा है, बहुत मज़ेदार कथा है। एक दिन हनुमान जी सीता जी के साथ बैठे हुए थे अंतपुर में और सीता जी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार पूरा होता है और आखिर में श्रृंगार के पूरे होने के बाद सीता देवी अपने मांग में सिंदूर भरती है, छोटे छोटी सी मात्रा में, छोटी सी उंगली से उसको अपने मांग में भर देती है। तो हनुमान जी बड़े कुतूहल से पूछते हैं, मैया ये आप क्या कर रही हो? तो वह कहते हैं कि ये सिंदूर है तो इसे लगाने से क्या होता है? तो सीता मैया कहती है कि ये सौभाग्य का लक्षण होता है। तो हनुमान जी तो वैसे वानर वेश में हैं तो कहते हैं कि सौभाग्य क्या होता है? तो कहते हैं पति के प्रति जो स्वामी निष्ठा है, पतिव्रत्य है, उसके लक्षण के रूप में ये सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो हैं, विवाहित स्त्रियाँ ग्रहण करती हैं, मांग में भर देती हैं। इससे क्या होता है? हनुमान जी ऐसे निरागस निष्पाप भाव में पूछ रहे हैं। तो अभी छोटे से हमारे बालक को क्या समझाएं? तो सीता देवी कहती है कि इसको मांग में भरने से प्रभु को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। बस ये बात हनुमान जी के मन में बैठ जाती है। अगले दिन वो सोचते हैं कि इतना सा सिंदूर मांग में भरने से अगर प्रभु को इतना आनंद होता है तो मैं अभी कल मेरे पूरे शरीर को सिंदूर लगाऊंगा तो प्रभु को कितना आनंद हो जाएगा। तो अगले दिन सभा में, सभा की शुरुआत होने के पहले, प्रभु रामचंद्र आने में देर है तो जिस रास्ते से प्रभु आने वाले हैं उस रास्ते में हनुमान जी अपने पूरे शरीर को सिंदूर लगाकर बैठ जाते हैं। सब लोग उनको देख के हंस रहे हैं, सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं है, केवल प्रभु को आनंद मिले यही परवाह है। तो प्रभु आ जाते हैं तो प्रभु भी देख के हंसते हैं। तो प्रभु पूछते हैं कि आज ये क्या रूप बना कर रखा है? तो वो कहते हैं कि अगर सीता मैया इतना सा सिंदूर लगाकर आपको आनंद दे सकती है तो सोचा कि आपको मैं परम आनंद आज दिला दूं। इसलिए हनुमान जी का ये जो सेवा भाव है प्रभु को प्रसन्न करने का, इसी की याद में और स्मृति में हनुमान जी के सब मंदिर में उनको सिंदूर लगाते हैं। ये सिंदूर उनके सेवा भाव, प्रभु को प्रसन्न करने की जो जिजीविषा है, जो तीव्र इच्छा है, उसका प्रमाण है। और भक्तगण भी वो सिंदूर उनके शरीर से स्पर्श करते हुए अपने शीश पर धारण करते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा हमें भी कभी प्राप्त हो जाए। फिर सेवा भाव का उनका एक और एक सुंदर लीला है, मजेदार। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत, सीता और सारे अयोध्यावासी ये जान चुके थे कि हनुमान जी की जो सेवा है इसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अरे कहाँ सेवा नहीं इनकी, अंतपुर में सेवा है, दरबार में सेवा है, बाहर सेवा है, युद्ध में सेवा है, अंदर सेवा है, ऐसी कोई सेवा नहीं है जो हनुमान जी नहीं करते। तो एक दिन सब लोगों ने एक मुलाकात किया, अपने आप से सभा बनाया। वे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत और सीता देवी खास तरह से बैठे थे। वो कहते थे हनुमान जी सब जगह आके सब सेवा ले लेते हैं, अंतपुर में भी विराजमान रहते, कैसे उनको हम दूर करें और उनकी सेवाएं हम ले लें और प्रभु से हमारा भी समय कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये एक निर्णय लेते हैं कि जितनी भी प्रभु की सेवा है, जितने प्रकार की सेवा है, अंतपुर में है, दरबार में है, वस्त्रों की है, धुलाने की है, जो भी सेवा है हम सब लोग बांट लेते हैं और कोई सेवा छोड़ेंगे नहीं तो हनुमान जी करेंगे क्या करें? तो सारी सेवाएं योजनाबद्ध रीति से अंतपुर की, बाहर की, दरबार की सब सेवाएं सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बांट लेते हैं। मानो हनुमान जी ने कोई बचा ही नहीं। हनुमान जी आते देखते अरे कोई सेवा ही नहीं है, सब लोग ले चुके हैं। अभी हनुमान कोई ऐसे भाव के नहीं है कि वो छीन लेंगे सेवा, नम्र है वो, प्रमुख स्वभाव उनका नम्रता का है। वो देख रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी सेवा ले चुके हैं, मेरी सेवा भी ले चुके हैं, कोई बात नहीं, सेवा तो करनी है, सेवा करने वालों को सेवा की कमी नहीं होती है। सब लोगों ने सब सेवा लेने के बाद भी हनुमान जी सोचते हैं कि जब प्रभु जमा ही देंगे तो चुटकुली बजाने के लिए कोई नहीं। तो ऐलान कर देते कि हम प्रभु जी, प्रभु रामचंद्र जब जमा ही देंगे तब हम चुटकुली बजाएंगे। अभी जमाई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी आ सकती है, दरबार में आ सकती है, बाहर आ सकती है, चलते हुए आ सकती है, अंतपुर में आ सकती है, भोजन के बाद आ सकती है, बात करते करते आ सकती है, किस समय भी जमाई आ सकती है। तो ये प्रभु के मुख के सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब जमाई देंगे और कब चुटकुली बजाएंगे। सब लोगों को एकांत चाहिए था, अपने अपने सेवा में प्रभु के साथ में एकांत चाहिए था, लेकिन ये हर एकांत में विराजमान है क्योंकि उनको चुटकुली बजानी है। तो सब लोगों ने आकर हनुमान के सामने हार मान ली कि आपके सेवा भाव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वास्तव रूप में हनुमान से सेवा छीनने के लिए सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ने ये कार्य नहीं किया था। हनुमान जी का सेवा भाव को प्रकट करने के लिए इन्होंने योजना बनाई थी, क्योंकि दिव्य जगत में अयोध्या धाम, द्वारका धाम, वृंदावन धाम, गोलोक धाम में कहीं ईर्ष्या नहीं होती, तो दूसरे की सेवा भाव की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए इन चारों ने ये लीला किया था, जिसमें हनुमान जी का श्रेष्ठत्व, सेवा करने का श्रेष्ठत्व जो था वो प्रकट हो गया। फिर हनुमान जी की नम्रता, जब महाभारत में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अपने शिष्य, अपने मित्र, अपने भक्त अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ चीजें प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए स्वयं भगवान उसके सारथी बन गए, और हर एक के रथ पर ध्वज था, तो इन्होंने, भगवान ने अर्जुन के लिए हनुमान जी को आह्वान किया, आदेश दिया, हनुमान जी आप अर्जुन के ध्वज पर सवार हो जाइए, अर्जुन का ध्वज ही बन जाइए, ध्वज रूप हो जाइए आप, और ध्वज में रहकर आप गर्जना कीजिए जोरदार, और शत्रु पक्ष के हृदय में डर पैदा कीजिए। हनुमान जी आए, अरे सेवा चाहिए सेवक को, कौन सी सेवा चाहिए, इसमें कोई चयन नहीं होता है, प्रभु की सेवा मिले इसी में भाग्य मानते भगवान के सेवक। हनुमान जी का तो दास शिरोमणि है, सेवक शिरोमणि है, उनको सेवा प्राप्त हो इसी में धन्यता है। लेकिन अगर हम गौर से विचार करेंगे तो 18 दिन के युद्ध में हनुमान जी केवल गर्जना ही करते रहे, और हनुमान जी का जो शक्ति है, हनुमान जी की जो योग्यता है वो कैसी है, वो तो अकेले ही रावण को मार सकते थे, अकेले ही रावण समेत सभी राक्षसों को मारकर लंका दहन करके लौट के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु को उसका श्रेय देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केवल रावण को चेतावनी दी और लौट के आए। वो सीता जी को उठाकर भी लेके आ सकते थे, लेकिन सीता जी के पतिव्रत्य की भावना का आदर करते उन्होंने छोड़ दिया उसको। उसी प्रकार से त्रेता युग में इतना दिव्य पराक्रम करने वाले हनुमान जी द्वापर युग के महाभारत युद्ध के जितने भी योद्धा थे उनके सामने तुच्छ थे, 18 अक्षौहिणी सैन्य को वो अकेले ही मार सकते थे, और पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी थे, 11 अक्षौहिणी कौरव पक्ष में थे, वो अकेले ही अर्जुन के लिए उनको विश्राम देके कि आप आराम करो तंबू में, मैं अकेले तुम्हारे लिए सब कौरवों का नाश कर दूंगा, ये शक्ति उनके अंदर थी। लेकिन इतनी शक्ति होने पर भी भगवान ने आदेश दिया आपको केवल गर्जना करना है, केवल चिल्लाना है बस, तो वो चिल्लाते रहे, इसे कहते नम्रता। जिसके लिए चिल्ला रहे हैं उससे भी अनंत शक्ति उनके अंदर थी, जो 18 दिन मेहनत करके इस युद्ध को जीतने वाला है उसको क्षणों में उसको समाप्त करने की शक्ति उस व्यक्ति में थी। वो व्यक्ति केवल प्रभु के आदेश के अनुसार 18 दिन तक लगातार अर्जुन के ध्वज पे बैठकर चिल्लाते रहे, और जो प्रभु ने बताया कि शत्रु पक्ष के हृदय में डर पैदा करो, भय पैदा करो, वो ही करते रहे। इतनी महान नम्रता है। हमारा स्वभाव कैसे होता है, अगर किसी MBA व्यक्ति को अगर हमने कहा कि अभी इस मेडिकल शिविर में आप वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़े रहो और क्राउड कंट्रोल करो, वो जो भीड़ आती है उसको आप संभालो, तो बोलेगा मन में, तो मैं तो MBA हूं, मैं तो व्यवस्थापन का कुशल स्नातक हूं, अब मुझे ये काम दिया जा रहा है। कभी कभी हमारे शिविर में हम बड़े बड़े विद्या विभूषित MBA ग्रेजुएट लोगों को टॉयलेट भी साफ करने लगा देते, तो वो सोचते हैं अरे हम तो MBA हैं तो व्यवस्थापन कर सकते हैं, हमको तो ये काम लगा दिया। तो हर एक व्यक्ति को कुछ भी काम करते समय अपने पद का, अपनी शिक्षा का, अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धिमत्ता का गौरव होता है, गर्व होता है, और वो सोचते हैं कि उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। और इतनी दिव्य योग्यता होते हुए भी, इतनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता होते हुए भी हनुमान जी को यहाँ पर केवल ध्वज में बैठकर चिल्लाने की सेवा दी जा रही है, और उनमें उसमें उनको उसमें कोई संकोच नहीं है, कोई त्रुटि या कोई दोष नज़र नहीं आ रहा है, कोई कमी नज़र आ रही है, अपने आप को निम्न समझने की भावना नहीं है, बस सेवा मिली, प्रभु ने सेवा दी, मैं उसको कर सकता हूँ, उनकी इच्छा पूर्ण करने की क्षमता इस सेवा के माध्यम से मिल रही है, बस उसी में अपने आप को धन्यता मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ सेवक का लक्षण है कि वो नम्र रहता है और सेवा में भेदभाव नहीं करता है कि ये श्रेष्ठ सेवा है या निम्न सेवा है, सेवा सेवा है, और सेवा भाव से वो आसक्त रहता है। उसका हनुमान एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो सेवा शिरोमणि क्यों है, क्योंकि सेवा से उनको आसक्ति है, सेवा के स्वरूप से उनको आसक्ति नहीं है। आगे जाकर हम देखते हैं कि गोवर्धन की लीला में भी हनुमान जी आते हैं। जब प्रभु सेतुबंध बना रहे हैं तो समय बहुत कम है, ऐसे नहीं कि आराम से बड़े प्रेम से फाइव स्टार सेतुबंध बनाना है। सेतुबंध के लिए समय की पाबंदी थी, कम से कम समय में अधिक से अधिक पर्वत लाना है और जल्द से जल्द उसको पूरा करना है। तो हनुमान जी ढूंढ रहे हैं कि सात कोस की जगह बाकी है, सात कोस का कोई एक ही पर्वत मिल जाए तो एक झटके में सेतुबंध पूरा हो जाएगा और जल्द से जल्द सीता जी की ओर हम पहुंच सकते हैं। तो वो हनुमान जी वृंदावन आए और गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया। तो ऐसे लीलया हम हिमालय के चट्टाने उठा रहे थे, हिमालय के पहाड़ भी उठा रहे थे। वो उसी तरह से एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, वो हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, दोनों हाथ से बल लगाया फिर भी नहीं उठे। तो उनको लगा चलो हमें अभी इसका विस्तार कहां तक है देखना चाहिए। तो इस तरफ जब गए तो गिरिराज जी गोवर्धन वहां बढ़ने लगे तो उसकी था नहीं पा सके। तो हनुमान जी दूसरी ओर बढ़ने लगे तो दूसरी ओर गिरिराज जी बढ़ने लगे। तो जब दोनों ओर दोनों दिशा में जब इस पर्वत की था अंत नहीं देख सके तो वो नम्र हो गए और चरणों में गिर गए, कहे महाराज जी आप कौन हो, आपका परिचय दो। तो गिरिराज गोवर्धन बोलते हैं मैं भगवान का सेवक हूँ, गोवर्धन हूँ, आप मुझे किस लिए उठाना चाहते हैं। तो संक्षेप में बता देते रामायण का वर्णन कि कैसे सीता जी का हरण हुआ है और कैसे पर्वत की आवश्यकता है सेतु बंध पूर्ण करने के लिए। तो तुरंत गोवर्धन जी फूल की तरह हल्के हो गए और हनुमान जी लेके उनको आकाश में उड़ गए। उतने में आकाशवाणी हुई कि अभी सेतु बंध पूरा हुआ है, अभी किसी और पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने उनको नीचे रखा, जहाँ से उठाए वहीं पर रख दिया। तो गोवर्धन जी महाराज इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि इतने युगों से मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभु की सेवा मिले, अभी पहली बार सेतु में समाविष्ट होने की सेवा मिल नहीं रही थी, मिलने ही वाली थी तो वो भी चुक गई। तो इतने रोए कि उसको देखकर हनुमान जी प्रभावित हो गए। तो ऐसा भी कोई सेवक होता है, आमतौर पर जो बेस्ट होता है ना, स्वर्ण पदक प्राप्त, उसे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दिखाई दिया तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन हनुमान जी यहां पर एक श्रेष्ठ भक्त होने का भी प्रकट दिखा रहे हैं, दर्शन दिखा रहे हैं। श्रेष्ठ भक्त का लक्षण क्या होता है कि अपने से भी अधिक श्रेष्ठ भक्त कोई दिखाई पड़ता है तो वो नतमस्तक हो जाता है, नम्र हो जाता है, उसे वंदन करता है और याचना करता है कि आपकी भी थोड़ी भक्ति हमें भी प्राप्त हो। तो बड़े गौरव से ईर्ष्या रहित रूप से हनुमान जी जाते हैं और प्रभु रामचंद्र को पूरा इस दिव्य भक्त का वर्णन सुनाते हैं कि कैसा महान भक्त था, उसके आंसू देखकर मैं तो भाव विभोर हो गया। प्रभु ने वरदान दिया है फिर कि अगले युग में जब आऊँगा तब मैं गोवर्धन के आसपास में मेरी अति उत्कट लीलाओं का प्रदर्शन करूँगा। तो अपने से भी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखने के बाद में भी जिसके मन में ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती है, नम्र रहता है और गौरव उस व्यक्ति के लिए हृदय में बना रहता है, वो एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है जो हनुमान जी ने अपने व्यक्तित्व में यहाँ दिखाया है। इसके साथ साथ हनुमान जी का चरित्र में हम नम्रता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, व्यवहार कुशलता, वाक चातुर्य, यश, कीर्ति, युद्ध कौशल्य, युद्ध सामर्थ्य, अजेय स्थिति, ऐसे सारे सद्गुणों का एक जगह समुदाय का मतलब है हनुमान जी। तो आइए इस हनुमान जी के विषय में हम चिंतन करें, क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और भगवान का अंश होने के नाते हम भगवान के नित्य दास हैं और दासता में ही परिपूर्णता प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। हनुमान जी इसके लिए एक आदर्श नेता है, भक्त शिरोमणि, दास शिरोमणि हनुमान जी, जिनका चरणों का पद चिन्हों का अनुगमन करके हम अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने की जो पराकाष्ठा कर रहे हैं उसमें उनकी कृपा से हम यश प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री हनुमान जी की जय।